नमस्कार भारत 29 अगस्त गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। ब्रिटिश संसद निलंबित करने के खिलाफ ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन। तालिबान अमेरिका की शांति वार्ता में कामयाबी मिलने के संकेत।
अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकलने के लिए अपना टाइम टेबल पेश करेंगे और इसके बाद पीस प्रोसेस का एक दूसरा फेज शुरू हो जाएगा।
और दुनिया जहान में अमेज़न के जंगलों की आग क्यों है हर देश के लिए खतरनाक।
अगर ये जंगल यहाँ कट जाएंगे और यहाँ से आग लगनी शुरू हो जाएगी तो उसकी जो इसका जो रोल है कार्बन को डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने का वो खत्म हो जाएगा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। ब्रेक्सिट से पहले ब्रिटेन की संसद को निलंबित किए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि 14 अक्टूबर को महारानी का भाषण होगा जिसमें वो महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा करेंगी। टोरी बैकबेंचर डोमिनिक ग्रीव ने सरकार के इस कदम को अपमानजनक बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे बोरिस जॉनसन की सरकार गिर सकती है। बिना समझौता वाले ब्रेक्सिट को रोकने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए संसद निलंबित किए जाने के आरोप से बोरिस जॉनसन ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो डील के साथ 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ छोड़ना चाहते हैं। 16 साल की स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर्यावरण के विज्ञान को नकारते हैं। उन्होंने कहा कि अमेज़न के जंगलों में लगी आग इस बात का संकेत है कि हमें अपने पर्यावरण को नष्ट करना बंद करना होगा। ग्रेटा थनबर्ग हवाई यात्रा में होने वाले कार्बन उत्सर्जन से बचने के लिए एक यार्ड पर 2 सप्ताह तक यात्रा कर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क हार्बर पहुंची। हर कोई मुझसे हमेशा ट्रंप के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें मेरा बस यही संदेश है कि विज्ञान की सुनिए, जबकि वो ऐसा नहीं करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर उन्हें जलवायु परिवर्तन की अहमियत को लेकर कोई नहीं समझा पाता तो मैं ऐसा क्यों करूं? इसलिए मेरा फोकस इस बारे में है कि जागरूकता फैलाने पर रहेगा और आमतौर पर लोग खुद ब खुद इस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे और ये एहसास करना शुरू कर देंगे कि ये संकट कितना बड़ा है। ये थे पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के शब्द। प्यूर्टो रिको इस समय हरिकेन डोरियन से निपटने की तैयारी कर रहा है। अनुमान है कि जल्द ही वो पूर्वी तट पर तेज हवाओं और बारिश के साथ ये टकराएगा। डोरियन अमेरिका के वर्जिन द्वीप से होकर गुजर रहा है और इसे हरिकेन के कैटेगरी 1 में रखा गया है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राज्य में आपात स्थिति की घोषणा की है और प्यूर्टो रिको को संघीय मदद देने के लिए कहा है। फलस्तीन के गजा पट्टी में जिहादी चरमपंथियों के शक में हमास ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले रात में हुए बम हमलों में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। गजा को हमास नियंत्रित करता है। यहां से आई खबरों में कहा गया है कि पुलिस चौकियों को निशाना बनाते हुए 2 आत्मघाती हमले हुए हैं। माना जाता है कि हमलावरों का संबंध इस्लामिक स्टेट से है। हमास के प्रवक्ता फाउजी बारहोम ने इन हमलों की निंदा की है। ये आतंकी हमले गजा की सुरक्षा, अस्थायित्व और फलस्तीनी जनता के हितों को निशाना बनाकर किए गए। इससे केवल इसराइली कब्जे को ही लाभ पहुंचता है। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि सुरक्षा और स्थायित्व वो सीमा रेखा है जिसे हम किसी को भी पार नहीं करने देंगे और न ही इससे खिलवाड़ करने की इजाज़त देंगे। ये थे हमास प्रवक्ता फाउजी बारहोम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सरकार के लिए काम करने वाले हैकरों ने कथित रूप से ईरान के अर्धसैनिक बलों के उस कंप्यूटर सिस्टम पर हमला कर उन्हें नाकाम कर दिया था जिन्हें खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के वरिष्ठ अमरीकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ये साइबर अटैक उसी दिन हुआ जिस दिन अमरीकी ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद जवाबी हवाई हमले की योजना को ट्रंप ने रद्द करने के आदेश दिए थे। खबरों में कहा गया है कि ईरान अभी भी अपने डेटा को रिकवर करने और बंद पड़े कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उधर अमरीकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने ईरान से अपील की है कि खाड़ी में तनाव घटाने के लिए वो वाशिंगटन के साथ वार्ता की मेज पर आए। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। ब्रिटेन की महारानी ने संसद निलंबित करने की सरकार की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। सितंबर में संसद निलंबित कर दी जाएगी, लेकिन इस फैसले पर ब्रिटेन में सांसदों और अभियान चलाने वालों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। लंदन में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस फैसले के खिलाफ याचिका पर 10 लाख लोग अब तक हस्ताक्षर कर चुके हैं। ब्यौरा सुना रहे हैं संदीप राय।
ब्रिटिश संसद को 5 सप्ताह के लिए निलंबित करने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के फैसले की चौतरफा आलोचना शुरू हो गई है। इस फैसले के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने बुधवार को लंदन में प्रदर्शन किया और इसके खिलाफ शुरू की गई याचिका पर अब तक 10 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ब्रिटेन की महारानी ने 23 दिनों तक संसद को निलंबित करने पर मुहर लगा दी है। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के बाहर आने की समय सीमा से कुछ हफ्ते पहले लिए गए इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है। परंपरा तोड़ते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर जॉन बर्को ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे संविधान का उल्लंघन कहा। विपक्ष के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बरतानवी लोकतंत्र को कब्जा कर रहे हैं।
सस्पेंडिंग पार्लियामेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स नॉट ऑन, व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग इज अ सॉर्ट ऑफ स्मैश।
संसद को निलंबित करना स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो हमला करके हमारे लोकतंत्र को कब्जा करना है, इसलिए जब संसद दोबारा मिलेगी अगले सप्ताह कुछ समय के लिए ही सही, तो सबसे पहले हम उन्हें रोकने के लिए कानून पास कराने की कोशिश करेंगे और फिर इसी मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये थे जेरेमी कोर्बिन के शब्द। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर तख्ता पलट रोको के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। बिना समझौते के ब्रेक्जिट को रोकने की कोशिशों को हाईजैक करने के आरोपों से जॉनसन ने साफ इनकार किया है। आलोचकों का कहना है कि ये ब्रेक्जिट मामले में सांसदों को उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी निभाने से रोक देगा। एंटी ब्रेक्जिट कैंपेनर गिना मिलर का कहना है कि बोरिस जॉनसन को अदालत में चुनौती दी जाएगी।
इट इज अनबिलीवेबल एक्चुअली दैट अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज पुट हिमसेल्फ अप।
ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कहा था कि वो हमारे देश, हमारी संसद और ब्रिटेन में भरोसा पैदा करना चाहते हैं, वो इस तरह का काम करेंगे जो कि वास्तव में भरोसे को धक्का पहुंचाएगा। वे इस हद तक जाएंगे, हमने सोचा नहीं था। ये थे एंटी ब्रेक्जिट कैंपेनर गिना मिलर के शब्द। पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर समेत कई बड़े चेहरे इसके खिलाफ अदालत में जाने की धमकी दी है। एसएनपी की न्यायिक प्रवक्ता जॉन जेरी पहले ही स्कॉटिश अदालतों में इस मामले को चुनौती देने का फैसला कर लिया है।
ब्यौरा सुना रहे थे संदीप राय। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने लंदन में हमारी सहयोगी गगन सब्बरवाल से संपर्क किया और पूछा कि ब्रेक्जिट की ओर बढ़ रहे ब्रिटेन के लिए संसद निलंबित किए जाने के क्या मायने हैं।
कल शाम को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II ने बोरिस जॉनसन के प्लान को अप्रूव किया है। वो प्लान था कि वो पार्लियामेंट सस्पेंड करना चाहते थे, तो जैसे ही क्वीन ने ये अप्रूव किया है, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अब सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने, द क्वीन ने ये भी बोला है कि 9 सितंबर से पहले और 12 सितंबर के बाद ये सस्पेंशन नहीं हो सकता। अगले हफ्ते एमपी समर हॉलीडेज के बाद वापस आ रहे थे, तो अभी जैसे ही ये सस्पेंशन प्लेस में आएगा तो पार्लियामेंट में कुछ एक्टिविटीज नहीं होगा और 14 अक्टूबर को क्वीन का स्पीच होगा। बहुत सारे लोग, एमपीज, जनरल पब्लिक इस बात को लेके बहुत ही अपसेट है।
तो गगन, ये बताइए, अब महारानी ने ये योजना तो मंजूर कर दी है, लेकिन ब्रिटेन में आगे क्या होने वाला है, वो भी तब जब 31 अक्टूबर को ब्रेक्जिट होना है।
मोस्ट लाइकली एमपीज, बाकी के एमपीज, अगर उन्होंने एक मेजॉरिटी फॉर्म किया बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट, फिर वो एक जनरल इलेक्शन ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास उतना अभी टाइम नहीं है। और जैसे कि आपको पता है, ब्रेक्जिट का डेट है 31 अक्टूबर, तो 2 हफ्तों में, 12 डेज में, इट्स वेरी अनलाइकली कि यू नो एमपीज कैन रीच एनी फॉर्म ऑफ कंसेंसस ब्रेक्जिट को लेके। तो इसकी वजह से बहुत सारे एमपीज नाराज है क्योंकि वो बोलते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक डिसीजन होना चाहिए, एमपीज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हम क्वीन को तो कोर्ट में लेके जा नहीं सकते, लेकिन एमपीज बोरिस जॉनसन को कोर्ट लेके जा सकते और ये बोल सकते कि उन्होंने क्वीन को मिस इन्फॉर्म किया है। मोस्ट लाइकली ये होगा कि ब्रिटेन ईयू छोड़ेगा 31 अक्टूबर को, लेकिन विद अ नो डील ब्रेक्सिट, अनलेस द एमपीज फॉर्म ए मेजॉरिटी और यू नो जनरल इलेक्शन को ट्रिगर करे।
जानकारी दे रही थी लंदन से बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि कतर में अमेरिका के साथ चल रही बातचीत अंतिम दौर में है और जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। अगर अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता सफल हुई तो अफगानिस्तान में 18 साल से चला आ रहा युद्ध समाप्त हो सकता है। ये वार्ता क्यों अहम है और अफगानिस्तान में आगे क्या हो सकता है, यही समझने के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने बात की बीबीसी पश्तो संवाददाता दाऊद आजम से।
असल में ये अफगान पीस प्रोसेस का पहला फेज है और इसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा। इस पहले फेज में अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत हो रही है और इसका ये नतीजा ये निकलेगा कि अमरीकी अफवाज अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकलने के लिए अपना टाइम टेबल पेश करेंगे और इसके अलावा तालिबान ये जमानत देंगे या गारंटी देंगे कि अफगानिस्तान आइंदा में फ्यूचर में किसी दूसरे मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित नहीं होगा और ये गारंटी भी देंगे कि तालिबान किसी दूसरे ग्रुपों यानी अलकायदा और दाइश वगैरह किस्म के ग्रुपों के साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे। पिछले तकरीबन एक साल से तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है और अब नवा राउंड जारी है और उम्मीद की जाती है कि इन दो मसाइल पर आइंदा चंद दिनों में एक कंप्रोमाइज़ हो जाएगा तालिबान और अमेरिका के दरमियान और इसके बाद तालिबान और दूसरे अफगान्स आपस में बैठेंगे और अफगान पीस प्रोसेस का एक दूसरा फेज शुरू हो जाएगा।
और इस दूसरे फेज में जो वहाँ की अभी की सरकार है उसका क्या रोल होगा?
अभी की सरकार उस फेज में शामिल होगी तो उसमें अभी की सरकार के अलावा सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल ग्रुप्स के नुमाइंदे भी होंगे और ये पता नहीं कि इन दो ग्रुपों के दरमियान बातचीत के लिए कितना वक्त दरकार होगा क्योंकि वो भी एक मुश्किल मरहला होगा क्योंकि तालिबान और दूसरे जो अफगान हैं वो इस बात पर बात करेंगे कि अफगानिस्तान का आइंदा सिस्टम किस तरह का होगा, इंतखाबात का कोई रोल होगा कि नहीं, वुमेन राइट्स औरतों के हकूक और मीडिया फ्रीडम और इसके अलावा दूसरी जो सिविल लिबर्टीज़ हैं और फ्रीडम्स हैं उनके मतलब ये क्या फैसला करेंगे। तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि दूसरे फेज में जेर बहस आएंगे और ये दोनों पार्टीज उन पर बात करेंगे। तो उसमें अमेरिका का रोल इतना अहम नहीं होगा क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक ऑब्जर्वर होगा।
बीबीसी पश्तो संवाददाता दाऊद आजम। और अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। संदीप राय तमाम अखबारों के साथ मेरे बगल में स्टूडियो में मौजूद हैं। बताइए संदीप।
जी कुलदीप, आज के लगभग सारे अखबारों में जम्मू कश्मीर की खबर को पहले पन्ने पर लीड बनाया गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी जिसमें केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इस मामले की सुनवाई अब संविधान पीठ करेगी और ये खबर लगभग सारे हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में पहले पन्ने पर बनी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कोयला खनन में 100% FDI करने के मोदी सरकार के फैसले को लेकर है। इसे भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है और कैबिनेट बैठक में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए FDI के नियमों में ढील दी गई है और कई सारे फैसले हैं इस खबर में।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें कहा गया है कि भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद एक सामाजिक कार्यकर्ता से बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछ लिया कि लियो टॉल्स्टॉय का उपन्यास युद्ध और शांति उसने क्यों अपने घर में रखा है, जबकि ये किसी दूसरे देश के युद्ध के बारे में है। पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए वेमन गोंजालेस की जमानत की याचिका पर ये कोर्ट सुनवाई कर रहा था।
जी, एक खबर जनसत्ता अखबार में मैं देख रहा हूँ, लिखा है कि कराची के ऊपर 3 विमानन मार्ग पाकिस्तान ने बंद कर दिए हैं, और इसी खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापा है। पर हिंदुस्तान टाइम्स ने इस विमानन मार्ग को बंद करने का कारण ये बताया है कि इस्लामाबाद आज जो है, यानी पाकिस्तान आज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, और उसका मकसद ये हो सकता है कि कश्मीर मसले पर जो तनाव है सीमा पर दोनों देशों के बीच, उसको और अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका किया जाए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ध्यान खींचने की कोशिश के तहत ये हो सकता है। बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। आज समय कम है हमारे पास, संदीप राय कर रहे थे अखबारों की समीक्षा। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु वतन लौट आई हैं। बीबीसी तेलुगु संवाददाता दीप्ति बथिनी ने उनसे बात की और पहले यही पूछा कि आगे वो क्या करना चाहती।
ऑफ कोर्स बहुत कुछ लग रहा है, और अभी आगे कुछ टूर्नामेंट्स हैं, ओलंपिक क्वालिफिकेशन हियर, तो आई होप आई गिव माय बेस्ट एंड ये विन का कॉन्फिडेंस आई होप आई टेक इट फॉरवर्ड एंड गिव माय बेस्ट।
स्पेशली स्पोर्ट्स में जब बात करते हैं, अभी आप एज अ वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन आप एक आइकन है अभी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, आगे जो आना चाहते हैं उसके लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुकी है, पर और महिलाएं आगे आने के लिए क्या करना होगा, बोथ अथॉरिटीज़ की तरफ से और एक सोसाइटी की तरफ से, और क्या करना होगा?
पहले ऐसा था कि महिले लोग बाहर नहीं आना है, वर्क नहीं करना चाहिए, पर अभी बहुत चेंजेस हुआ था एंड सपोर्ट गवर्नमेंट भी बहुत दे रहे हैं, और बहुत वुमेन एम्पावरमेंट और कैंपेन्स भी बहुत आ रहे हैं, तो आई थिंक वी वुमेन आर डूइंग रियली वेल, नॉट ओनली स्पोर्ट्स बट ऑल्सो बिजनेस या इन एनी थिंग, वी वुमेन आर रियली स्ट्रांग एंड आई थिंक वी हैव टू बी प्राउड अबाउट इट एंड हम बिलीव करना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली इन द कमिंग इयर्स देयर विल बी डेफिनेटली अ लॉट मोर वुमेन कमिंग अप।
अभी कुछ महीनों पहले ये जेंडर पे गैप जो है स्पोर्ट्स में लेकर स्पेशली, इस बात पे काफ़ी विवाद हुआ है और काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन्स भी आगे आके बोल रहे हैं इस बात पे, केवल इंडिया में नहीं बाहर देशों में भी इसका बहुत चर्चा चल रही है, तो आपका क्या मानना है इसका?
वेल मैं कुछ अदर स्पोर्ट्स में कमेंट नहीं करने चाहती हूँ, क्योंकि हमारा स्पोर्ट बैडमिंटन में ऐसा कभी भी नहीं था, सो आई एम इट्स गुड दैट दे गिव इक्वल यू नो थिंग टू एवरी बोथ मेन एंड वुमेन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इम्पोर्टेंस टू बोथ ऑफ देम।
एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो आप हर बार जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर गेम जीतने के बाद जो मेडल आता है या जो भी आता है वो अपने देश के लिए या अपने कोच के लिए डेडिकेट करते हैं, पर आपने बहुत ऑनेस्टली बोल दिया था कि ये मेरी माँ के लिए, ऐसा क्यों?
उस दिन मेरा मम्मी का बर्थडे था तो मैंने उनको डेडिकेट किया, ऑब्वियसली सिर्फ मेरा मेहनत नहीं है, ऑफकोर्स पेरेंट्स का मेहनत भी है, और बहुत सैक्रिफाइस किया था मेरा पेरेंट्स ने और बहुत हार्डवर्क भी किया था, तो आई थिंक उनके वजह से मैं आज इधर हूँ, सो आई एम रियली वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स लाइक देम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम।
पीवी सिंधु से बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता दीप्ति बथिनी। और वक्त है दुनिया जहान का। धरती की 20% ऑक्सीजन पैदा करने वाले अमेज़न के जंगलों में लगी आग से पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो ने इन चिंताओं को कम करके आंका है। अमेज़न के ये जंगल क्यों हैं दुनिया के लिए अहम, और यहाँ लगी आग वैश्विक चिंता का विषय क्यों है, इस बारे में दुनिया जहान आज सुनिए वात्सल्य राय की।
दुनिया जहां ब्राजील के रोंडोनियो प्रांत के ऊपर से उड़ान भरते बीबीसी संवाददाता विल ग्रांट।
From this vantage point, you get a sense of the scale of the disaster.
इस जगह से आपको ये समझ आता है कि ये क्षेत्र कितनी बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। कई हेक्टेयर जंगल धुएं में तब्दील होते जा रहे हैं। अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके होंगे।
सदियों से ब्राजील की शान माने जाने वाले अमेज़न के जंगलों से हजारों किलोमीटर दूर बसा है साओ पाउलो शहर। यहाँ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना के पास भी अमेज़न के वर्षावन में लगी आग को लेकर बताने के लिए बहुत कुछ है।
अमेजोन का जो जंगल है यहाँ साओ पाउलो से जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त यहाँ से करीब 3000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आग लगी हुई थी और धुआं उठ रहा था तो वो पूरा धुआं साओ पाउलो तक पहुँच गया। और साओ पाउलो जो है वो शहर बहुत बड़ा शहर है, करीब करीब 2200 फीट की ऊंचाई पे है, सर्दी के दिन चल रहे हैं तो इसके से धुआं काफी नीचे आ गया। ये धुआं अब अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स तक पहुंच गया है। ब्राजील के उत्तर में एक शहर है पोर्टो वेले, वहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है क्योंकि इतना धुआं फैल गया।
साओ पाउलो शहर के आसमान को दिन में काला कर देने वाले धुएं को यूरोप के तमाम देशों के लोगों ने टीवी स्क्रीन पर देखा। ये धुआं उनकी आंखों में ऐसा चुभा कि वो सड़कों पर उतर आए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के अलावा स्पेन की राजधानी मैड्रिड, फ्रांस की राजधानी पेरिस, साइप्रस, कोलंबिया और उरुग्वे में भी लोग सड़कों पर उतरे और अमेजन के जंगल में लगी आग को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो और उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमेजन की आग का मुद्दा G7 समूह की बैठक में भी उठा और आग से निपटने के लिए ब्राजील को वित्तीय मदद देने का ऐलान किया गया। इसके पहले फ्रांस, फिनलैंड और आयरलैंड ने यूरोपीय यूनियन से ब्राजील पर सख्ती करने को कहा। जंगल की आग से बोलीविया भी परेशान है, लेकिन दुनिया के रडार पर ब्राजील ही है। फ्रांस और यूरोप के बाकी देश अमेजन के जंगल में लगी आग को लेकर बेवजह फिक्र नहीं दिखा रहे हैं। दुनिया भर के पर्यावरणविदों की राय में धरती को अगर एक जिस्म माना जाए तो अमेजन के जंगल उसके फेफड़े और गुर्दे की तरह हैं। वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना को सुनिए।
अमेजन जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। उसके जो पेड़ है वो जमीन से नीचे से पानी खींचते हैं और वो पानी फिर वो भाप बन के ऊपर जाता है, वो बाद में बरस जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमेशा गीला सा मौसम रहता है और बारिश बहुत ज्यादा होती है। जो अमेजन नदी है दुनिया की सबसे नंबर दूसरे की नदी है, वो वहाँ से निकल के आती है इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश होती है। इसका जो कुल क्षेत्र मिला के 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का जो क्षेत्र है उसका लगभग ऑलमोस्ट दुगना। अगर ये जंगल यहाँ कट जाएंगे और यहाँ से आग लगनी शुरू हो जाएगी तो उसकी जो इसका जो रोल है कार्बन को डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने का वो खत्म हो जाएगा।
अमेजन रेनफॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका के कई देशों पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर और गुयाना तक फैला है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यानी करीब 60% हिस्सा ब्राजील में है। वर्षा वनों के इस जंगल में पौधों और जंतुओं की करीब 30,000 प्रजातियां हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें करीब 113 ऐसी आदिम जनजातियां हैं जिनका अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। दशकों से पर्यावरण के क्षेत्र में स्थापित नाम वंदना शिवा अमेजन से भली भांति परिचित हैं। वो कई बार यहाँ जा चुकी हैं और कई किताबों में भी इसका जिक्र कर चुकी हैं।
सबसे पहले तो जितनी जैव विविधता अमेजोन में है उतनी कहीं नहीं है। जैव विविधता के साथ सांस्कृतिक विविधता है, जितने इंडिजिनस कल्चर्स अमेजोन में है उनकी तबाही हो रही है। वो रोज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब ये जंगल जल जाएंगे तो ऑक्सीजन की जगह हमें एक और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये लीवर है, ये क्लीनिंग करता है पूरे सिस्टम को। तो जब जंग जाएंगे तो पोल्यूशन और बढ़ेगा। क्लाइमेट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए इससे बड़ी कोई एक इकोसिस्टम नहीं है। वैसे ही क्लाइमेट की तबाही हो रही है, वैसे ही टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, सूखा बढ़ रहा है, फ्लडिंग बढ़ रही है।
लेकिन वही इंडिजिनस यानी आदिम जनजातियों के लोग बोलसोनारो के राष्ट्रपति बनने के बाद से अपने अधिकार छीने जाने की चिंता में घुल रहे हैं। उन्हें बोलसोनारो की नीतियां और बयान डरा रहे हैं।
वो हमारे बारे में ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब हम उन्हें अपने बारे में बोलते हुए सुनते हैं तो वो अच्छी बातें नहीं होती। वो हमारे बारे में और हमारे बच्चों के बारे में बुरा बोलते हैं। हम बहुत दुखी हैं।
मौजूदा संकट के लिए यूरोप की सड़कों से लेकर ब्राजील के जंगल तक राष्ट्रपति बोलसोनारो को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। शोभन सक्सेना को सुनिए।
देखिए, अभी जो आग लगी है जो अमेजोन में भी हो रहा है, इसके अगर किसी को दोषी माना जा सकता है तो सीधे सीधे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो, जो कि जनवरी में जिन्होंने पद संभाला था। लेकिन पद संभालने के पहले जो इलेक्शन की जब कैंपेन चल रही थी तो उन्होंने इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया था कि वो अमेजन को खुला कर देंगे, वहाँ पे माइनिंग कंपनी जा सकती है, खेती हो सकती है, और ये भी कहा कि वहाँ जो जनजाति रहते हैं उनको वो सभ्य बनाएंगे, उनको सिविलाइजेशन में लेके आएंगे। ट्रॉपिकल ट्रम्प के नाम से कुछ लोग बुलाते हैं क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं और उनका जो व्यवहार, उन्होंने अपने आप को डोनाल्ड ट्रम्प के आधार पे काफी क्या हुआ, वो दक्षिण पंथी विचारधारा के हैं। ब्राजील में आपको पता है कि डिक्टेटरशिप रही है 20-25 साल पहले, उसका ये सपोर्ट करते हैं, पर्यावरण के बिल्कुल खिलाफ हैं, और इनके अपने जो व्यक्तिगत संबंध वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बहुत ज्यादा है।
पर्यावरणविद आंकड़ों के आधार पर दावा करते हैं कि बोलसोनारो के राष्ट्रपति बनने के बाद से जंगल पर कब्जा करने वाले बेखौफ हो गए हैं, वो जंगलों में आग लगा रहे हैं। ब्राजील नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च यानी INPE ने एक सैटेलाइट डाटा प्रकाशित किया। इसके मुताबिक इस साल ब्राजील में आग की घटनाओं में 85% का इजाफा हुआ है। हालांकि बोलसोनारो ने आरोप लगाया कि INPE पेड़ों की कटाई की संख्या में इजाफे की बात करके उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश में है। उधर वंदना शिवा दावा करती हैं कि राष्ट्रपति सोया और मीट लॉबी के दबाव में पर्यावरण के हितों से समझौता कर रहे हैं, लेकिन शोभन सक्सेना दावा करते हैं कि ब्राजील की मौजूदा सरकार की नजर अमेजन के जंगलों में छिपे खनिजों पर है।
ये सबको पता है कि अमेजन का जंगल उसके नीचे बहुत सारे तरह तरह के खनिज पदार्थ से भरा हुआ है, तो इस तरह की बात हो रही कि इन्होंने राष्ट्रपति ने ऑलरेडी एक इन्होंने डील कर रखी है अमेरिकन कंपनी के साथ, ये कनाडा की कंपनीज के साथ, उनको यहाँ पे लेके आना चाहते हैं।
लेकिन राष्ट्रपति बोलसोनारो आलोचनाओं से बेपरवाह दिखते हैं। बीते हफ्ते उन्होंने जंगल में लगी आग के लिए NGO को जिम्मेदार बताया।
मुझे लगता है कि ये आग NGO ने लगाई है, उन्होंने धन की मांग की थी, उनका इरादा क्या था, वो ब्राजील के लिए मुश्किलें लाना चाहते हैं।
वंदना शिवा राष्ट्रपति के इन आरोपों को बेतुका बताती हैं।
जंगल में NGO नहीं बैठे हैं, जंगल में आदिवासी बैठे हैं, इंडिजिनस पीपल बैठे हैं, और वो आग रोकते हैं और आग लगाने वालों के सामने आके अपनी जान को खतरा दे। आग तो इनके लोग लगवा रहे हैं और ये इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर पिछली सरकार मरीना सिल्वा जब एनवायरमेंट मिनिस्टर थी, उन लोगों ने जंगल के कटान को रोका और ये अमेजॉन लॉस को रोक पाए, तब NGO एक्टिव थे रोकने में, आदिवासी और NGO एक्टिव है।
शोभन सक्सेना भी कहते हैं कि राष्ट्रपति के आरोपों में कोई दम नहीं है और बढ़ते दबाव के बाद अब वो जांच भी करा रहे हैं।
पिछले हफ्ते लाखों की संख्या में वो सड़कों पे आए, 20 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए, उसने बोलसोनारो की नीतियां उनका लोगों ने विरोध किया। अगर NGO जिम्मेदार है तो ये सवाल उठता है कि सरकार ने उन NGO के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, और अब सरकार ने मान लिया है कि वहाँ पे जो आग लगा रहे हैं वहाँ पे वहाँ के लोग लगा रहे हैं, लोकल लोग लगा रहे हैं जो कि उसको लैंड को लेना चाहते हैं, और ब्राजील की आर्मी वहाँ पे जा रही है, एयरफोर्स वहाँ पे जा रही है, और उसके लिए उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन भी अब शुरू कर दिया है कि आग लगाने के लिए जिम्मेदार कौन है।
दुनिया खासकर यूरोप के देश राष्ट्रपति बोलसोनारो को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, हालांकि खुद बोलसोनारो किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिखते। वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से सीधे उलझ रहे हैं। शोभन सक्सेना दावा करते हैं कि बोलसोनारो जानते हैं कि अमेरिका का समर्थन उनके साथ है। वो चीन और भारत की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हैं।
जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, डोनाल्ड ट्रम्प का सवाल है, वो सीधे अपना समर्थन बोलसोनारो को दे रहे हैं। बड़े बड़े देश जैसे कि भारत है और चीन, इनकी तरफ से कोई अभी तक कोई बहुत बड़ा वक्तव्य नहीं आया। हालांकि चीन भारत दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं ब्राजील के साथ, तो इनकी तरफ से भी कुछ दबाव बढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेजोन जंगल ये केवल ब्राजील की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है।
और अब इस समस्या का धुआं गहराता ही जा रहा है, और इस काले धुएं में दुनिया के तंदुरुस्त फेफड़े भी कमजोर और बीमार हो रहे हैं।
वात्सल्य राय की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी लिखिएगा जरूर। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए संदीप राय से।
BBC समाचार। ब्रेक्सिट से पहले ब्रिटेन की संसद को निलंबित किए जाने को लेकर ब्रिटेन में विरोध शुरू हो गया है। टोरी बैंक बेंचर डोमिनिक ग्रीव ने चेतावनी दी है कि इससे बोरिस जॉनसन की सरकार गिर सकती है। 16 साल की स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पर्यावरण के विज्ञान को नहीं मानते हैं। प्यूर्टोरिको इस समय हरिकेन डोरियन से निपटने की तैयारी कर रहा है। अनुमान है कि जल्द ही वो पूर्वी तट पर तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ टकराएगा। फलस्तीन के गजा पट्टी में जिहादी चरमपंथियों के शक में हमास ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले रात में हुए बम हमलों में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी।
अमरीकी सरकार के लिए काम करने वाले हैकरों ने ईरान के अर्धसैनिक बलों के उस कंप्यूटर सिस्टम को नाकाम कर दिया है जिन्हें खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी मुलाकात आज शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। तो अब कुलदीप मिश्र को समस्त साथियों के साथ दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।